نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کچھ چیزیں جو ہم دیکھ رہے تھے قرآن پاک کے ناطے سے, تو چلیے قرآن پاک کا اصل نام تو ہم نے دیکھ لیا القرآن یا قرآن, اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی دیکھی. اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے کتنے نام ہیں. صفاتی نام. صفات کیا ہوتی ہیں؟ ایٹریبیوٹس, وصف. کسی کے اندر جتنی خوبیاں ہوتی ہیں نا, اس کے اتنے ہی نام ہوتے ہیں. تو مختلف لوگوں نے بہت مختلف ریشوز رکھی, یعنی 55 تک بھی قرآن پاک کے نام جمع کیے گئے, لیکن ایک لسٹ بنوانے کی نیت سے کہ شاید آپ کو اتنی صفات کا تذکرہ, جب آپ کو قرآن پاک کی اتنی صفات کا پتہ چلے تو اس کے سیکھنے کا اور شوق آئے. وہ حصے صرف آپ کے سامنے رکھوں گی جو واقعی قرآن پاک میں آئے ہیں, کیونکہ کچھ نام قرآن پاک کے احادیث سے بھی لیے گئے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ تقریباً 44 صفات ایسی ہیں قرآن پاک کی جو قرآن پاک میں ہی آتی ہیں. اور اس کو سنتے ہیں بالکل ایسی محسوس کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز معروف ہیں نا, حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اصل نام جو ہے نا وہ اللہ ہے, اصل نام جو آپ کا ریئل نیم ہوتا ہے جیسے, اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہی ہے. لیکن اس کے بعد جو باقی 98 نیمز ہیں وہ صفات ہیں. مطلب رحمان ہے تو اس کے رحم کی صفت ہے, الودود ہے تو دینے کی صفت ہے. اسی طرح قرآن پاک کا اصل نام تو قرآن ہے, اور یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ میں جلدی سے بولوں گی, آپ نہیں لکھ سکیں گے تو غم نہ کریں, لیکن جو لکھ سکے اس پہ خوشی منائیں. قرآن پاک کا صفاتی نام کریم. قرآن پاک میں ہی آتا ہے انہو لقرآن کریم, سورۃ واقعہ میں ہے. دوسرا نام الحکیم, سورہ یاسین کی پہلی آیت میں ہے. والقرآن الحکیم. پھر العظیم, سورہ حجر کی آیت 87 میں ہے. ولقد آتیناک سبا من المثانی والقرآن العظیم. پھر قرآن پاک کا نام مجید اور المجید ہے. سورۃ بروج میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید, اور قاف میں آتا ہے والقرآن المجید, اس کی آیت نمبر 1 ہے. پانچواں نام ہے المبین, سورۃ حامیم کی دوسری آیت میں آتا ہے ول کتاب المبین. مبین کہتے ہیں واضح کرنے والا, بلکہ اگر میں ان کی نام مطلب ہی بولتی جاؤں تو شاید فائدہ ہوگا. شروع میں دیکھ لیں, کریم کا معنی ہوتا ہے کرم والا, نرم. بہت پیاری چیز کو عرب لوگ کریم کہتے تھے. انگور کی بیل کو کریم کہتے ہیں, یعنی سافٹنیس کا معنی آتا ہے اس میں. اور الحکیم کا معنی جو میں نے بولا تو حکمت والا یا حکم سے فیصلے کرنے والا. پھر اسی طرح العظیم بڑا, اور مجید اور المجید کا معنی ہوتا ہے مجد والا, بزرگی والا. پھر اسی طرح المبین, واضح کرنے والا اور واضح. پھر رحمہ, قرآن پاک کا یہ نام سورہ یونس کی آیت سے آیت میں آتا ہے خداؤں و رحمت للمؤمنین, آیت نمبر 57 میں. اور رحمت کا معنی بھی عام طور پہ سب کو معلوم ہوتا ہے, رحمت والا. پھر علی یون, یہ نام سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, بے شک وہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے, جو ہمارے پاس ہے البتہ بلند اور حکمت والی. پھر بصائر, سورۃ الانعام آیت 104 میں آتا ہے. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ. بصائر بصیرت کی جمع ہے, یعنی دلائل. اس قرآن پاک میں بہت سارے دلائل بھی ہیں. پھر اسی طرح بشیرم و نذیرہ, خوشخبریاں دینے والا اور آگاہ کرنے والا. سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 4 میں یہ نام موجود ہے. عموماً تو یہ دو صفات انبیاء کرام کے لیے آتی ہیں, لیکن یہاں قرآن پاک کے لیے آئی ہیں. پھر اسی طرح بشرا, خوشخبری دینے والا. یہ و بشرا للمسلمین, سورۃ نحل آیت 89 اور 102 میں یہ نام استعمال ہوا ہے. پھر عزیزن, حامیم سجدہ کی آیت 41 میں آیا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. عزیز کہتے ہیں غالب کو. قرآن پاک حقیقت میں غالب کتاب ہے. جہاں قرآن پاک کی کوٹیشن آپ کوٹ کر دیں گے, باقی ساری چیزیں اس سے نیچے ہو جاتی ہیں. پھر بلاغن, پہنچا دینا. سورۃ ابراہیم آیت 52 میں آتا ہے. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ, یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے. اسی طرح بیانن, بیان, جیسے بیان کہتے ہیں نا اردو میں ہم, تو بیانن. سورۃ آل عمران آیت 138 میں آتا ہے. ھذا بیان للناس, ये लोगों के लिए बयान करना है, यानी मुबैन है, खुला है, को ढका छुपा काम नहीं है ये। फिर मौइज़ा और शिफा, ये दोनों नाम जो है सूरह यूनुस की आयत 57 में आते हैं, कज्जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउ लिमा फिस्सुदूर। मौइज़ा कहते हैं दिल में उतरने वाली बात, दिलों को नरम करने वाली चीज़, और हकीकत है कि कुरान पाक में ये खूबी मौजूद है। इसी तरह शिफा को तो आप जानते ही हैं, दिलों की बीमारियों की शिफा है। फिर इसी तरह अहसनुल कसस, अहसनुल कसस सूरत यूनस सॉरी सूरत यूसुफ आयत 3 में आता है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनुल कसस, हम आप पर बेहतरीन किस्सा बयान कर रहे हैं। तो ये भी कुरान पाक की सिफत आई है। इसी तरह अहसनुल हदीस और इसी तरह मुतशाबह, ये दोनों नाम जो हैं, और तीसरा नाम मसानी, दोहराया जाने वाला, ये सूरह जुमर की आयत 23 में आती हैं। तीनों सिफात, अल्लाहु नज़ला अहसन अल हदीसी किताबं मुतशाबिहं मसानिश, अल्लाह ने नाजिल की है बेहतरीन बात, एक किताब है, मिलती जुलती हैं और दोहराई जाने वाली इसकी आयतें। इसी तरह 21वां नाम है मुबारकुन, सूरत स्वाद आयत 29 में आता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, किताब जो हमने आपकी तरफ नाजिल की ये बरकत वाली है। इसी तरह आयत नंबर इसका 22वां नाम है मुसद्दिक, तस्दीक करने वाला, वेरीफाई करने वाला, और 23वां नाम है मुहैमिन, निगेबानी करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। ये दोनों नाम जो है सूरत मायदा की आयत 48 में इस्तेमाल हुए हैं, मुसद्दिक लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि, तस्दीक करने वाली उस चीज़ की जो आपके हाथों इनके हाथों में है किताब में से, और उसकी निगेबानी करने वाली। फिर 24वां नाम है कय्यम, कय्यम सीधा रखने वाला, कायम रहने वाला, सूरत कहफ की आयत नंबर 2 में आता है, कय्यम लियुन्ज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्ह, कय्यम बहुत ही प्यारा नामानी, अल्लाह करे हम जब सूरत कहफ पे पहुंचे तो इसको बहुत तफसील से देखें। यानी सीधा रखता है कुरान पाक असल में, जो इंसानों को भी सीधा करता है और बाकी सारी चीज़ों को सीधा करता है। तो बहरहाल ये कुछ नाम थे जिससे ये पता चलता है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी सिफात रखी हैं और इसको क्या कुछ अता किया। इसी तरह आप देखिए कि सूरत अल फातिहा को जब हम देखते हैं तो सूरत फातिहा के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे खजाने रखे हुए हैं। ख़ास तौर पे सूरत फातिहा का जो नाम है वो फातिहा ही है, फाताहा से खोलने वाली, लेकिन इसके भी कुछ नाम हैं, दूसरे नाम जो इसके सिफाती नाम है। और अरबी ज़ुबान का एक असलूब याद रखिए कि जिस चीज़ के जितने नाम होते हैं वो उतनी ही सिफात की हामिल होती है। इंशाल्लाह जब हम बकायदा सूरह फातिहा को शुरू करेंगे तो वहाँ आपके सामने ये चीज़ रखी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दिल में कुरान पाक की मोहब्बत पैदा कर दे और हमें इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। चलिए अब हम चलेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कुरान पाक के असलूब को समझने और तर्जमे को याद करने में हमारी मदद करेंगी। अब हम देखेंगे कि कुरान पाक का लफ्जी तर्जमा कैसे याद करें। ये ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के दिल धड़कने लगते हैं। उनको कोर्स में सबसे मुश्किल यही लगता है कि हम कुरान पाक का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा कैसे याद करें। और ये एक मिरेकल भी है, हकीकत में दुनिया का कोई कलाम ऐसा नहीं है जिसको आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सके, लेकिन कुरान पाक में ये खूबी मौजूद है और इसकी वजह है, और वो क्या कि ये अल्लाह का कलाम है। तो इसको देख करने के लिए कुछ चीज़ें आपको अरबी ज़ुबान से मुतल्लिक मालूम होनी चाहिए, जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि आप इस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो नोट कीजिएगा कि कुरान पाक अरबिक ज़ुबान में क्यों नाजिल हुआ, क्यों ना नॉर्वेजियन में ही हो जाता, इंग्लिश में ही हो जाता, उर्दू में होता तो क्या खूबी थी। पहली बात है कि अगर ये उर्दू में भी हो जाता ना तो पढ़ना फिर भी सबने नहीं था। क्यों? इसलिए कि आज ये अरबिक में है फिर भी सारे अरब नहीं इसको जानते। लिटरली मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ जब मैं किसी अरब कंट्री में थी, और वहाँ जब मेरी लिटरली बात हुई किसी से तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये सारी बातें नहीं पता, सिर्फ अरबी जानने से लोग अरबी कुरान को नहीं समझते। इसलिए अगर आपके दिल में ये ख्याल छुपा हुआ है ना कि हम कुरान तो तब पढ़ते अगर हम अरब में होते, कितना अच्छा होता, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की रजा पे राजी रहे, उसके फैसलों पे खुश रहे। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो किए उसी से फ़ायदा उठा ले, ठीक है। अब बात होती है कि कुरान पाक अरबी ज़ुबान में क्यों नाजिल हुआ है। इसकी पहली वजह एक तो ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने जिस ज़ुबान को चाहा उसमें नाजिल किया। दूसरी वजह यह है कि चूंकि कुरान पाक अरब में नाजिल हो रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखातिबीन थे, यानी जिनको मुखातिब किया जा रहा था, वो जिनको जिन जिनसे खिताब किया जा रहा था वो अरब थे, और किसी इल्हामी किताब का उस जगह रहने वाले लोगों की ज़ुबान में होना लाजमी है, तभी फ़ायदा उठाएंगे ना। जैसे आपको ड्राइविंग करनी है तो क्या आप ड्राइविंग करते हुए दूसरी ज़ुबान के साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं? उसी ज़ुबान के पढ़ते हैं ना, तो जब फ़ायदा उठाना है तो उसी ज़ुबान से होगा। तो अब एक तो ये होता कि कुरान पाक उतर जाता फ़ारसी में, और साथ ही फिर नबी सल्लम से कहा जाता कि आप इसको पहले अरबी में ट्रांसलेट करें फिर लोगों को बताएं, ज़रूरत नहीं थी ना। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इसको उतारा, ये दूसरी वजह है, क्योंकि जो लोग थे वहाँ वो अरब थे। तीसरी एक यूनिक खूबी है अरबी ज़ुबान की, और वो क्या कि इसमें एक एक लफ्ज़ के भी मानी होते हैं। अल्फ़ाबेटिक है ना, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ए का खाली शायद कहीं माना हो सकता है, बाद दफ़ा ए को एक के मानों में इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। क्या बी का कोई मानी है? सी का, डी का, ई का, एफ का, एक लफ्ज़ का कोई माना नहीं। इसके बरक्स देखिए सर, अरबी ज़बान को खाली अलिफ है ना, इसको अरबी में हमज़ा कहते हैं, और हमज़ा के कई मानी है। कहीं ये सवाल के लिए आता है, कहीं इनकार के लिए आता है। आप तफसीर में अक्सर ये मुश्किल लफ्ज़ सुनेंगे मेरे मुँह से भी, कि इस्तफहाम बराए इनकार, इस्तफहाम बराए ताज्जुब, इस्तिफहाम सवाल करना। अब सिर्फ अलिफ के कितने मानी है? लफ्ज़ बा 17, 17 मानी है बा के। इसी तरह देखिए, अलिफ बा के बाद ता को छोड़ दें, सा को छोड़ दें, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रोज़ा, सीन, सीन लफ्ज़ खाली सीन, इसके कितने मानी अरबी में? सौफा के मानों में आता है, अनकरीब के मानों में आता है। जो लफ्ज़ मैं बोलती हूँ ना, पीछे लिखना भी चाहें तो लिखती जाए, इनके लिए आसानी रहे। सीन के भी मानी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए, शीन, स्वाद, दुआत, आइन, गैन, फा, काफ, खाली काफ जो है उसके बाद जो काफ है, सिंपल काफ, इसका मानी है तू, तेरा, तुम्हें। जैसे जो इंग्लिश में यू है ना, यू, योर्स, ये इंग्लिश में काफ है। मसलन इया का, खास तेरी ही, काफ का मानी तुम है, तेरे लिए आता है। इसी तरह आप देखिए, लाम, खाली लाम हो तो भी इसका मानी है, कभी कभी आता है। लतुसलुन्ना, अलबत्ता के मानों में। हाँ, फिर इसी तरह लाम के बाद आप देखिए कि मीम, खाली मीम जो है इसका भी मानी कुछ हालात में आता है जो इस वक्त आपको जरूरत नहीं है। फिर नून, नून का मानी हम, हमारा, हमें, जैसे नाबुदु, जो ही नून आएगा आप समझ जाएंगे इसमें हम छुपा हुआ है, या हमारी छुपी हुई है, या हमें, जैसे इंग्लिश में वी, आवर्स, अस, यही तीन लफ्ज इसमें नून में आते हैं। फिर आप देखिए वाओ, खाली वाओ का मानी है, और अरबी में कोई जी वाओ मानी आता है, इसके भी कई मानी अत्फ की होती है, मिलाने के लिए, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना जमीनो आसमान, उसके बीच में वाओ लग जाता है, तो अरबी में वाओ के भी मानी होते हैं। फिर इस तरह वाव कसमिया होती है, वल असर, अब आप देखेंगे यहाँ वाव का मानी कसम है, हाँ, लेकिन कहीं और के मानों में आता है। फिर इसी तरह या, छोटी या देखें, या का मानी मैं हूँ, आई, मी, माइन, मैं, मेरा, मुझे, ये है या में छोटी या, जैसे अब दी, मेरा बंदा, तो या जो है वो मेरे लिए। ये सिर्फ आपके शऊर को बेदार करने के लिए, कुछ भी ना याद रखें तो खैर है, लेकिन ये समझ लें कि अरबी ज़ुबान में कितनी वसअत है। इसी तरह थर्ड फोर्थ पॉइंट इसका नोट करेंगे आप, कि दो लफ्ज़ों के मिलने से भी मानी बन जाता है। मसलन ला के मानी क्या है? ला मैंने नहीं,
ला भी कस्मी होता है, ला उकसिमु भी हाजल बलद कस्मिया। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए, मीम प्लस अलिफ क्या बना, माँ। दो मानी, माँ के भी कितने मानी है, कहीं नहीं के मानों में आता है, कभी जो के मानों में आता है। फिर इसी तरह देखिए, अब आप देखिए, बा प्लस माँ, मीम और फिर प्लस अलिफ, तीन लफ्जों के मिलने से भी आता है, बी माँ। फिर इस तरह देखें, एक और कॉम्बिनेशन है दो लफ्जों का, ये तो तीन का हो गया, तो इसको बाद में कर दीजिएगा। बा प्लस हा क्या हुआ, बिही। हाँ, तो बा के बाद ही लग गया जेर। फिर इस तरह आप बोलो, आप लोग बोले, कुराने पाक में जो अमूमन इस्तेमाल होते हैं लफ्ज, इन्होंने एक लफ्ज बोला। आप देखिए कि ये एक अगला पॉइंट लिख लें कि तीन लफ्जों के मिलने से भी मानी होते हैं। मसलन देखें, सा प्लस मीम प्लस मीम क्या बना, सुम्मा। सुम्मा का मानी क्या होता है फिर, तो पता क्या चला कि अरबिक जुबान जो, ये बड़ी सिस्टमेटिक जुबान है, एक एक लफ्ज के मानी होते हैं। फिर इसी तरह आप देखें, खोले कोई और लफ्ज बोले जो कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल होता है। जी शाबाश, मीन अल मीम प्लस नून, सिर्फ इसी को देख लें, ये बहुत अच्छा लफ्ज इन्होंने बोला। देखिए अब इस तरह लिखा ना आपने, मीम और नून, इसको आप कर दें मीम की जेर और नून की जजम, तो मिन बन गया, और आप इसको मीम की जबर और नून पे कर दें तो फर्क है। मन क्या है, हु कौन कौन, हाँ, और मिन है से। मसलन आप देखिए कि बिस्मिल्ला, अब ये भी छोटा सा आपको दिखेगा, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अगर मैं आप में से किसी से कहूं कि आप इसके लफ्जों को अलग अलग करें, खोलें, तो आप ये देखें, ये असल में एक लफ्ज है कि दो है, एक लग रहा है ना, लेकिन असल में ये दो लफ्ज है। कैसे देखिए, बा प्लस इस्म था, ये हमजा गिर गई इसकी तो बिस्म रह गया, ये लफ्ज एक है कि दो है। जी परेशान तो नहीं है आप ज्यादा, आप कहेंगे पहले इतने मसले थे जिंदगी में, अब और आगे। लेकिन अल्लाह का लफ्ज एक है या दो लफ्ज है, एक है ना, चलिए देखते हैं। आपको पता है कि अल्लाह क्या लफ्ज था, अल प्लस इलाह था, ये एक लफ्ज है कि दो है, अर्रहमान एक ही लफ्ज है ना। हाँ जी, अब इसको खोल के देखें, अल प्लस रहमान, अब तो ये सब जान देंगे। अर रहीम एक लफ्ज है कि दो है, आप बताएं। शाबाश, देखिए दो है, अल प्लस रहीम। अब ये अल क्या है, ये देखें, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अल निकाल देना तो अरबी उर्दू बन जाती है। रहमान का लफ्ज उर्दू में आता है, रहीम का आता है, इलाह का आता है, तो अल लगा अर रहमान अर रहीम कह दिया तो ये अरबी का। किताब को देखें, जैसे अल किताब है ना, अभी उर्दू में क्या है, अल प्लस किताब। किताब तो उर्दू में भी बोलते हैं ना, इंग्लिश में भी कभी आते हैं, तो अल क्या है, जैसे इंग्लिश में दी एक होता है, मसलन जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं बुक और यहाँ आप लिखते हैं द बुक, बुक और द बुक में क्या फर्क है जी, पीछे से आप बताएं। ये क्या है, नकीरा है, नकीरा का लफ्ज सुना है आप लोगों ने, इंग्लिश में क्या है बोले, कॉमन नाउन। ठीक है, और ये क्या है, मारिफा, प्रॉपर नाउन। तो ये खास बुक है, ये आम है, बिल्कुल अरबी जुबान में जो अल है ना, जहां भी अल इला होगा या अल अर रहमान है, ये मारफा है, खास कोई चीज है, अल किताब कोई खास किताब है। ठीक है, तो ये एक हल्की सी आपके लिए ये वजाहत थी कि अरबी जुबान में किस तरीके से लफ्ज मिलते हैं।